रेडियो तेहरान के सभी आदरणीय श्रोताओं की सेवा में हसन अब्बास और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोताओं, सदा की भांति आज भी अपने कार्यक्रम का शुभारंभ हम पवित्र कुरान मजीद की तिलावत और अनुवाद से करेंगे। आज आप पवित्र कुरान मजीद के सूरह निसा की पहली और दूसरी आयत की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे। कारी हैं श्री अब्दुल बासित।
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। हे मनुष्यों, अपने उस पालनहार से डरो जिसने तुम सबकी एक अस्तित्व से सृष्टि की और उसी से उसके जोड़े की भी रचना की और फिर दोनों से बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं को फैला दिया। और उस ईश्वर से डरते रहो जिसके द्वारा तुम एक दूसरे से प्रश्न करते हो। ईश्वर को दृष्टि में रखो और अपने खूनी रिश्तेदारों अर्थात निकट परिजनों के संबंध में कोई कमी न करो कि निसंदेह ईश्वर तुम्हारे कर्मों का निरीक्षक है। और अनाथों को उनकी संपत्ति दे दो और अपने खराब और अपवित्र माल को उनकी अच्छी और पवित्र संपत्ति से न बदलो तथा उनकी संपत्ति को अपने माल के साथ मिलाकर खा न जाओ कि ये बहुत बड़ा पाप है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9800 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। दोस्तों, आज शुक्रवार है, आबान माह की 19, नवंबर की 10 और रबीउसानी की 25 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनेंगे पत्र संसार, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा विज्ञान की डगर। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। गजा के अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों पर इसराइल की पार्श्विक बमबारी जारी। ईरान ने सचेत किया है कि इसराइल के हमलों में तेजी से पता चलता है कि जंग का दायरा बढ़ रहा है। प्रतिरोधकर्ता गुट इसराइल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कठोर निर्देश जारी किए हैं। और अब आप विस्तार से अख्तर अब्बास से समाचार सुनिए। ज़ायनी सेना ने गजा पट्टी पर बमबारी जारी रखते हुए शफा अस्पताल के आसपास के इलाकों पर बमबारी की, जिसमें 6 लोग शहीद हो गए। इससे पहले ज़ायनी युद्ध विमानों ने रंतीसी अस्पताल को भी निशाना बनाया था। अमरीका की ओर से दावा किया गया कि इसराइल सीमित संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गया है। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि इसराइल ने संघर्ष विराम पर सहमति जताई है, मगर ज़ायनी प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि कोई संघर्ष विराम नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि हमास पहले सारे कैदियों को आजाद करे, उसके बाद ही संघर्ष विराम की बात होगी। इसराइल की इस बात के लिए दुनिया भर में निंदा की जा रही है कि वह हमास के खिलाफ ऑपरेशन की बात कर रहा है, लेकिन अंधाधुंध बेगुनाह नागरिकों को मार रहा है, जबकि हमास उसके हमलों का बहादुरी से मुकाबला कर रहा है। चीन ने मांग की है कि शुक्रवार को सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई जाए और अस्पतालों पर इसराइल के हमलों के विषय पर चर्चा की जाए। अमरीकी सरकार पर देश के भीतर भी भारी दबाव पड़ रहा है कि वो गजा में आम नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के कत्लेआम बंद करवाए, लेकिन अमरीकी सरकार जनमत को धोखा दे रही है और प्रभावी रूप से इसराइल पर दबाव नहीं डाल रही है। इसराइली सेना लगातार गजा के अस्पतालों को निशाना बना रही है। पिछली रात भी इसराइल के युद्ध विमानों ने गजा के कई अस्पतालों को निशाना बनाया। तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के दक्षिण में स्थित खान यूनिस इलाके में अल जजीरा चैनल के रिपोर्टर हानी महमूद का कहना है कि पूरे क्षेत्र पर इसराइल की भीषण बमबारी जारी है। हानी महमूद का कहना था कि गजा में शहर और क्षेत्र के दूसरे उत्तरी हिस्सों को भारी इसराइली बमबारी से निशाना बनाया गया था, और ऐसा लग रहा है कि इन हमलों में जानबूझकर चिकित्सा केंद्रों और अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि गजा पर इसराइल के हमलों की लगातार बढ़ती शिद्दत को देखते हुए साफ हो गया है कि जंग का दायरा अब जरूर बढ़ जाएगा। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि तेल अवीव के अपराधों के जारी रहने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। उन्होंने लिखा कि एक महीने से अधिक समय से जारी गजा जंग में ज़ायनी शासन का भयानक अपराधी चेहरा खुलकर सामने आ गया है। लेबनान के हिजबुल्ला आंदोलन ने सीमावर्ती इलाके में ज़ायनी सेना के ठिकानों पर अपने नए हमलों का ऐलान करते हुए गजा की जनता और रेजिस्टेंस फोर्सेस की मदद जारी कहा है कि गजा की जनता और रेजिस्टेंस फोर्सेस की मदद जारी रखेंगे। हिजबुल्ला ने अपने बयान में कहा कि अल मुतिल्ला इलाके में ज़ायनी सेना के ठिकानों पर मिसाइल मारे गए, जिसमें कई ज़ायनी सैनिक हताहत और घायल हुए हैं। लेबनान की सीमा के करीब मारे जाने वाले सैनिकों की संख्या बताने से इसराइल गुरेज कर रहा है, लेकिन अनुमान है कि इस मोर्चे में कम से कम 150 ज़ायनी सैनिक मारे जा चुके हैं। لبنان کے اسلامی پرتیرودھ آندولن حزب اللہ نے لبنان اور اویدھ ادھیکرت فلسطین کے بیچ سیما پر استھت اسرائیل کے ایک سینے ٹھکانے پر تازہ کارروائی کی خبر دی ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے انوسار لبنان کے اسلامی پرتیرودھ آندولن حزب اللہ نے ایک بیان میں گھوشنا کی کہ شکروار کو حزب اللہ کے جوانوں نے لبنان اور اسرائیل کے بیچ سیما کے پوروی حصے میں زائنی سینا کے اڈے کو اچت ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حملہ سٹیک تھا جس میں اسرائیلی سینا کو کافی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ جہاد اسلامی سنگٹھن کی سینک شاخہ قدس بریگیڈ نے کہا ہے کہ وہ دو قیدیوں کو مانوی بنیادوں پر رہا کرنے کو تیار ہیں۔ قدس بریگیڈ کے پروکتا ابو حمزہ نے کہا کہ ہم اپنے پاس موجود قیدیوں میں سے دو کو مانوی بنیادوں پر رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پروکتا کا کہنا تھا کہ ہم نے مانوی اور سواستھ کی بنیاد پر ہنا قادسیر کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ غزہ پر اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ان میں ہو سکتا ہے کہ بوڑھی مہیلا کے لیے دوا کا پربند کر پانا کٹھن ہو جائے۔ جہاں اسرائیلی راشٹر فلسطین کا سمرتھن کرتا ہے اور اس دیش میں پرتیرودھ کرتا گٹ غزہ کی مظلوم جنتا کا سمرتھن کرنے کے لیے دکشن میں اسرائیل اور پورب میں امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہیں آتنکوادی گٹ وشیش روپ سے خونخوار آتنکی گٹ داعش نے اسرائیل کے ہوائی حملوں کے ساتھ ہی اپنی گتیویدھیاں تیز کر دی۔ اس کے علاوہ آتنکی گٹ داعش نے پچھلے مہینے سیریا کے خلاف 6 آپریشن انجام دیے جو اب تک ابھوتپورو رہا۔ یہ حملے دیر زور کے اشولہ اور بادیا علاقوں سے لے کر حمص اور رقہ تک الگ الگ جگہوں پر انجام دیے گئے۔ مقبوضہ فلسطین کے تٹیہ شہر ایلات میں ایک اسکول کی عمارت پر ڈرون حملہ ہوا، جس کے بعد اسرائیلی سینا نے کہا کہ وہ اس گھٹنا کی جانچ کر رہی ہے کہ ڈرون کہاں سے آیا۔ اس سے پہلے اسرائیلی سینا نے کہا تھا کہ ایلات کی طرف سے آنے والے میزائلوں اور ڈرونوں کو مار گرایا گیا۔ ایلات کی نگر پالیکا کے پرمکھ نے کہا کہ دھماکے کے بعد سارے سارجنک کاریہم رد کر دیے گئے۔ اس حملے سے اسرائیلیوں میں بڑا خوف ہے کیونکہ غزہ پر جاری حملوں کے بیچ انہیں یہ لگتا ہے کہ ایلات اور آس پاس کے شہر سرکشت ہیں اور وہاں پر کوئی حملہ میزائل ڈرون نہیں پہنچ پائے گا۔ یمن کے جن آندولن انصار اللہ نے اعلان کیا کہ وہ فلسطینی جنتا کے ساتھ ہے اور اسرائیل پر ڈرون حملوں اور میزائلوں سے حملے کر رہا ہے۔ اسرائیلی سینا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایلات شہر پر ہوئے ڈرون حملے کے جواب میں سیریا میں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جبکہ نیٹ پلس نے یمن میں انٹرنیٹ سیوا پورن روپ سے بادھت ہونے کی خبر دی ہے۔ اسرائیلی سینا نے آج دعویٰ کیا کہ اس نے ایلات شہر پر ڈرون حملے کے جواب میں سیریا میں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ یمن کے جن آندولن انصار اللہ کے راجنیتک کاریالے کے ایک سدس نے کہا ہے کہ یمن کے پاس ایسی شمتائیں ہیں جو اسے فلسطینی مدعے اور فلسطینی امنگوں کا سمرتھن کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں۔ یمن کے جن آندولن انصار اللہ کے راجنیتک کاریالے کے سدس علی القحوم نے زور دے کر کہا ہے کہ یمن میں زائنی شاسن کے سین اور مہتوپورن ٹھکانوں کو دھیرے دھیرے نشانہ بنانا جاری رکھا جائے گا۔ اسلامی گڑتنتر ایران کے ودیش منتری کا کہنا ہے کہ اس یو کھیتر میں استھائی آرتھک سہرتا سبھی سدسوں کے لیے فائدے مند ہے۔ انہوں نے ازبکستان کی راجدھانی تاشقند میں 16ویں ایسیو شکر سمیلن کے آیوجن اور اسلامی گڑتنتر ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی کو اپستھتی کا ذکر کرتے ہوئے یہ ٹویٹ کر کے کہا۔ آئی آر آئی بی کے پرمکھ نے راشٹریہ میڈیا دوارا پرتیرودھ کرتا گٹ کے 100% سمرتھن پر بل دیا ہے۔ ایران کی پرمانو ارجا سنستھا کے پرمکھ محمد اسلامی نے کہا کہ غزہ پٹی پر پرمانو بم گرانے کی اسرائیلی منتری کی دھمکی کا مدعا سنیکٹ سنگ میں اٹھایا جانا چاہیے۔ بھارت میں دلی اور NCR کے پردوشن کے مدعے پر سپریم کورٹ نے کٹھور نردیش دیے ہیں۔ دیش کے سروچ نیالے نے کہا ہے کہ موسم کے بھروسے نہیں بیٹھا جا سکتا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ہم نے ٹیکسیوں پر آڈ ایون لگانے کو کب کہا۔ پنجاب کو پھٹکار لگاتے ہوئے عدالت نے کہا کہ اس بار آپ کا دھیان پرالی جلانا روکنے پر نہیں ہے، تب یہ حال ہوا ہے۔ دلی اور پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کھیتوں میں پرالی جلانے کے معاملے ہر حال میں رکنے چاہیے۔ عدالت نے معاملے کی سنوائی 21 نومبر تک استھگت کر دی ہے۔ پردوشن پر نینترن پانے کے لیے دلی سرکار نے آڈ ایون کاریہ لاگو کیا ہے اور عدالت میں اس کے فائدے بھی گنوائے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے انتراشٹری سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवारुल हक ने आर्थिक सहयोग संगठन एको की बैठक में बल देकर कहा है कि गजा में युद्ध विराम के लिए सामूहिक रूप से प्रयास किए जाने की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज शुक्रवार की सुबह दावा किया कि जानी सरकार ने मानवता के आधार पर युद्ध विराम के प्रति सहमति जताई है। जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम को दोबारा आरम्भ करें और ग्राम वासियों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान समय पर करें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवारुल हक ने आर्थिक सहयोग संगठन एको की बैठक में बल देकर कहा है कि गजा में युद्ध विराम के लिए सामूहिक रूप से प्रयास किए जाने की जरूरत है और इसराइल ने गजा में जो अपराध किए हैं और कर रहा है उसे उनका जवाब देना चाहिए। एको की बैठक में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अनवारुल हक ने गजा में इसराइल द्वारा किए जा रहे अपराधों की भर्त्सना की और बल देकर कहा कि एको संगठन को गजा में तुरंत युद्ध विराम कराने के लिए सामूहिक ढंग से प्रयास करना चाहिए। साथ ही अख्तर अब्बास,
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवारुल हक ने आर्थिक सहयोग संगठन ECO की बैठक में बल देकर कहा कि गजा में युद्ध विराम कराने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास किए जाने की जरूरत है और इसराइल ने गजा में जो अपराध किए हैं और कर रहा है उसे उनका जवाब देना चाहिए। ECO की बैठक में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अनवारुल हक ने गजा में इसराइल द्वारा किए जा रहे अपराधों की भर्त्सना की और बल देकर कहा कि ECO संगठन को गजा में तुरंत युद्ध विराम कराने के लिए सामूहिक ढंग से प्रयास करने चाहिए। क्षेत्रीय मामलों के एक विशेषज्ञ अली शरीफी निजात कहते हैं कि ECO संगठन में ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और उज्बेकिस्तान जैसे महत्वपूर्ण देश शामिल हैं और इन देशों द्वारा ठोस दृष्टिकोण अपनाए जाने की स्थिति में गजा में युद्ध विराम कराने के संबंध में प्रभाव पड़ेगा। ज़ायनी शासन के अपराधों की भर्त्सना और गजा में युद्ध विराम कराने के संबंध में तेहरान, अंकारा और इस्लामाबाद के बहुत अच्छे दृष्टिकोणों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आर्थिक सहयोग संगठन ECO की बैठक में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अनवारुल हक ने फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के प्रति समरसता और सहानुभूति जताते हुए बल देकर कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अनुसरण करने का दावा करने वालों ने खुखार व रक्त पिपासु की प्रवृत्ति अपना ली और गजा में जघन्य अपराध अंजाम दे रहे हैं और इस आधार पर ECO संगठन को सामूहिक रूप से गजा में युद्ध विराम के लिए प्रयास करने चाहिए। रोचक बात यह है कि अब अमेरिका गजा में युद्ध विराम की बात करने लगा है, जबकि ये वही अमेरिका है जिसने अभी हाल ही में गजा में युद्ध विराम के संबंध में पेश किए जाने वाले प्रस्ताव को वीटो कर दिया था। जानकार हलकों का कहना है कि फिलिस्तीनी बच्चों और महिलाओं का खून बहाने का जिम्मेदार मात्र इसराइल नहीं है बल्कि इसमें अमेरिका और पश्चिमी व यूरोपीय देश भी शामिल हैं। इसी प्रकार इन जानकार हलकों का मानना है कि अवैध ज़ायनी शासन ने जिस तरह से गजा पट्टी और फिलिस्तीन के दूसरे क्षेत्रों में अपराध किए हैं और कर रहा है उसकी मुख्य वजह अमरीका और उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले कुछ पश्चिमी व यूरोपीय देशों द्वारा इसराइल का व्यापक समर्थन है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक विशेषज्ञ मुर्तजा हैदर इस बारे में कहते हैं कि गजा की स्थिति क्षेत्रीय देशों व संगठनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है और ये देश व संगठन एक दूसरे के साथ मिलकर ठोस दृष्टिकोण अपनाकर ज़ायनियों के अपराधों को समाप्त कराएं वरना ज़ायनी अधिक दुस्साहस के साथ गजा में अपने अपराधों को जारी रखेगा। ECO की बैठक में ईरान के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन के विषय को उठाया और फिलिस्तीन में शहीद होने वालों के सम्मान में एक मिनट का मौन रखा। इसी प्रकार ECO की बैठक में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के गठन पर बल दिया। इसी प्रकार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने गजा के संबंध में अमरीका और पश्चिमी देशों के दृष्टिकोणों की आलोचना करते हुए कहा कि विश्व जनमत गजा में अमरीका की भागीदारी से ज़ायनियों के युद्ध अपराधों का साक्षी है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज शुक्रवार की सुबह दावा किया कि जानी सरकार ने मानवता के आधार पर युद्ध विराम के प्रति सहमति जताई है। अल जजीरा के अनुसार बाइडेन ने कहा है कि ये सही दिशा में एक कदम है और इससे आम नागरिकों को युद्ध से भागने में मदद मिलेगी और अधिक सहायताएं प्रभावित क्षेत्रों में भेजी जा सकेंगी। ये दावा ऐसी स्थिति में किया जा रहा है जब जमीनी सरकार के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि बंदियों की रिहाई के बिना गजा पट्टी में कोई युद्ध विराम नहीं होगा। साथ ही अहमद अब्बास।
अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार की सुबह दावा किया कि जमीनी सरकार ने मानवता के आधार पर युद्ध विराम के प्रति सहमति जताई है। अल जजीरा के अनुसार बाइडेन ने कहा कि ये सही दिशा में कदम है और इससे आम नागरिकों को युद्ध से भागने में मदद मिलेगी और अधिक सहायताएं प्रभावित क्षेत्रों में भेजी जा सकेंगी। ये दावा ऐसी स्थिति में किया जा रहा है कि जब ज़ायनी सरकार के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि बंदियों की रिहाई के बिना गजा पट्टी में कोई युद्ध विराम नहीं होगा। फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के खिलाफ इसराइल के पाशविक हमले कब बंद होंगे ये तो समय बताएगा, पर इस मध्य सवाल ये है कि जो बाइडेन अब युद्ध विराम की बात क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी रणनीति के तहत युद्ध विराम की बात कर रहे हैं? इस संबंध में जानकार हलकों का मानना है कि जो बाइडेन का दावा राजनीति से खाली नहीं हो सकता। 35 दिनों का समय बीत गया मगर ज़ायनी शासन अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका। उसने आरंभ में दावा किया था कि वो हमास को खत्म कर देगा, परंतु आज तक वो न तो हमास को खत्म कर सका और न ही कर सकेगा। इसी प्रकार का दावा उसने लेबनान के इस्लामी आंदोलन हिजबुल्लाह के बारे में भी किया था, पर वो न केवल हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर सका बल्कि हर समय से अधिक मजबूती के साथ हिजबुल्लाह मौजूद है और हिजबुल्लाह की मात्र मौजूदगी ही इसराइल के लिए बहुत बड़ा दबाव और उसकी हार है। और अब वही बात हमास के बारे में भी कही जा रही है। इसराइल 35 दिनों से भीषण बमबारी व जघन्य अपराध कर रहा है और इस दौरान 350 से अधिक ज़ायनी सैनिक मारे गए हैं और 50 से अधिक आधुनिकतम मरकावा टैंक तबाह हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि ज़ायनी सरकार की ताकत की कलई खुल गई और हिजबुल्लाह लेबनान के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह की वो बात पूरी तरह सच है जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल मकड़ी के जाले से भी कमजोर है। इसराइल ने गत 35 दिनों में किसी प्रकार के अपराध में संकोच से काम नहीं लिया। मस्जिदों, गिरजाघरों, अस्पतालों, स्कूलों, शरणार्थी शिविरों और आवासीय क्षेत्रों पर भीषण बमबारी की और अमेरिका और मानवाधिकार की रक्षा का राग अलापने वाले किसी भी देश ने एक बार भी इसराइल की बर्बरता व क्रूरता की भर्त्सना नहीं की। पूरी दुनिया में इसराइल की बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और पूरी दुनिया अमेरिका, पश्चिमी व यूरोपीय देशों के मानवाधिकार की वास्तविकता को देख रही है। ये वही अमेरिका है जो एक तरफ मानवाधिकार की रक्षा की बात करता है और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी लोगों के जनसंहार के लिए इसराइल को हथियार और बम देता है और पूरी निर्लज्जता के साथ कहता है कि इसराइल को जिस हथियार की जरूरत होगी हम उसे देंगे। दूसरे शब्दों में अमेरिका ये कह रहा है कि फिलिस्तीनी लोगों की हत्या के लिए हम हथियार देने के लिए तैयार हैं और अमेरिका ने विभिन्न प्रकार के हथियारों की खेप इसराइल पहुंचाकर अपना वास्तविक चेहरा दिखा दिया है। सारांश यह है कि अमेरिका और उसकी हां में हां मिलाने वालों ने इसराइल की बर्बरता का समर्थन करके अपनी वास्तविकता का परिचय दे दिया और अमेरिका और उसके पिछलग्गू देशों ने मानवाधिकार की रक्षा का जो नकाब अपने चेहरों पर डाल रखा था उसकी भी सच्चाई जग जाहिर हो गई।
जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम को दोबारा आरंभ करें और ग्राम वासियों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान समय पर करें। उन्होंने कहा कि अब प्रशासन को लोगों के पास जाने की जरूरत है और हम डेमोक्रेसी के ढांचे को और मजबूत बनाना
चाहते हैं।
जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा ने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वो बैक टू विलेज प्रोग्राम को दोबारा आरंभ करें और ग्रामीण क्षेत्र में जिन लोगों को जो भी समस्याएं उनका समाधान समय पर करें। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि पिछले कई वर्षों से बैक टू विलेज नामी प्रोग्राम इसलिए अमल में लाया गया ताकि देहाती लोगों का काम हो। उन्होंने कहा कि अब प्रशासन को लोगों के पास जाने की जरूरत है और इसीलिए हमने कहा था कि हम डेमोक्रेसी के ढांचे को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति में सुधार के साथ साथ हम करप्शन फ्री और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में तमाम कार्य करने जा रहे हैं। एक सरकारी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हम ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि उनके लिए हम हर समय उपलब्ध होंगे और जो भी तमीर तरक्की और उनकी जो भी समस्याएं होंगे उनका तुरंत समाधान होगा। उन्होंने एक बार फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों पर बल दिया कि वो जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की में प्रशासन का हाथ बटाएं। उन्होंने कहा कि समय अब आ गया है कि राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के हित में कार्य किया जाए और वही बड़ी राजनीति होगी। उन्होंने कहा कि हमने अब स्थिति में सुधार नहीं लाया बल्कि यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। अब पॉलिटिकल पार्टीज पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी अपना कार्य करें और लोगों के कामकाज में हाथ बटाएं। इस बीच एक बार फिर विपक्षी दलों ने नई दिल्ली पर बल दिया है कि वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस करें। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने आज पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से ये आशा लगाए बैठे हैं कि वो हमारे हित में निर्णय देंगे क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हुआ वो अनडेमोक्रेटिक था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है कि उनको वो स्टेटहुड मिले क्योंकि जिस तरीके से वो लिया गया वो एक गैर जमहूरी तरीके से लिया गया और हम ये मानते हैं कि ये सरकार से ज्यादा हम सुप्रीम कोर्ट पे बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जब भी उनका फैसला आएगा न सिर्फ लोगों के जो एहसास आते हैं उनके ऊपर बात होगी बल्कि जो हमारे जो हकूक हैं जमहूरी हकूक उनके ऊपर बात होगी। ये आजकल जो पीआरआई रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको कह रहे हैं कि आप सेल्फीज उठाइए जो अपने काम हैं उनके साथ। अब आप सोचिए एक लेपा पोती जिस तरीके से ये कर रहे हैं अपने कामों के लिए, इससे आपको समझ आना चाहिए। अगर कोई चीज सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें लोगों का बहुत अहम है हिस्सा बनना। जब लोग हिस्सा ही नहीं रहना चाहते और क्यों हिस्सा रहेंगे जब आप एक स्टेट को डाउनग्रेड कर रहे हैं तो उसमें सेलिब्रेशन की कौन सी बात। इसलिए जल्द से जल्द यहाँ अपनी एक जमहूरी हुकूमत आए फिर वो सेलिब्रेट करेंगे। हम वापस जब हमारे पास स्टेटहुड आएगा हम उसको सेलिब्रेट करेंगे जिससे लोगों को खुशी भी होगी।
मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
तो श्रोताओं, सिप्ते मोहम्मद हसन की इसी रिपोर्ट के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजनीति चर्चा, जिसे लेकर उपस्थित हैं हमारे साथी मोहम्मद मेहदी। और अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है आपका मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार, उसके उपरांत आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान की टक्कर। तो सबसे पहले प्रस्तुत है आपका मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार।
पत्र संसार।
दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपने भैया रविश जैदी और दीदी मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे।
जी दीदी, और साथ में ये भी बताते चलें, इस वक्त भारत में जो है वो क्रिकेट का विश्व कप हो रहा है।
जी
दीदी, इस वक्त पूरा भारत जो है वो क्रिकेटमय भी है।
जी,
और जिसे कहा जाए कि भारतीय टीम जो है वो अच्छा कर भी रही है, खेल भी रही है और लगातार मैच जीत रही है। तो भारत में खुशियों का माहौल है, बिल्कुल जैसे त्योहार हो रहा हो। तो ये आशा करते हैं कि बहरहाल आप इस वक्त क्रिकेट का मजा ले रहे होंगे, क्रिकेट विश्व कप का। लेकिन साथ साथ दीदी एक और भी चीज़ है कि जिस तरह गजा में जो हो रहा है उसको लेकर हमारा मन जो है बहुत दुखी है, और न केवल हमारा मन बल्कि जिस जिस इंसान के दिल में जो है वो दिल होगा
जी।
तो वो इस गज़ा में होते
जो परेशान हाँ, हैं जी,
बहुत ही ज्यादा जो है दिल दहला देने वाला और दुखी करने वाला मंजर वहाँ पर देखने को मिला है।
जी जी, तो हम अपने ईमेल की तरफ मुड़ रहे हैं और बेलूर घाट दक्षिण दिनाजपुर पश्चिम बंगाल से विदान चंद्र सान्याल ने हमें ईमेल लिखा है। अमरीकी राजनीतिक टिप्पणीकार भाषविद और दार्शनिक नॉम चॉम्स्की ने कहा कि दुनिया परमाणु तबाही की ओर बढ़ रही है और इस तबाही को टाला नहीं जा सकता है। जलवायु और अन्य समस्याओं के तार्किक समाधान के साथ विश्व के नेताओं की विफलता इस तबाही के पीछे एक सक्रिय कारक है। दूसरी ओर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि जो लोग यूक्रेन में रूस की हार देखना चाहते हैं उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि परमाणु शक्ति संपन्न देश पारंपरिक युद्ध हारने पर परमाणु युद्ध शुरू कर सकता है। मेदवेदेव के भाषण के बाद नॉम चॉम्स्की ने संभावित परमाणु तबाही की बात की, लेकिन मेरा दिमाग मुझे इतना सोचने की इजाज़त नहीं देता। दुनिया ने दो विश्व युद्ध देखे हैं। दुनिया ने एक ही क्षमता हासिल करने के बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध को भी देखा है। युद्ध से विनाश के सिवा कुछ नहीं मिलता, तो विश्व का समझदार नेतृत्व इस समस्या का शीघ्र ही कोई कारगर समाधान अवश्य निकालेगा। संयुक्त राष्ट्र के लिए अपनी योग्यता साबित करने का समय आ गया है। पुतिन को दबाव में रखने के लिए पश्चिम तरह तरह के प्रतिबंध लगा रहा है, इससे रूस को दिक्कत होगी, लेकिन ये सोचने का कोई कारण नहीं है कि समस्या केवल रूस में ही होगी। रूस ईरान या म्यांमार में नहीं है। रूस के पास दूसरों को उस छेद में खींचने की क्षमता है यदि वे स्वयं खतरे में हैं। और आखिर में लिखते हैं, युद्ध की शुरुआत में तेल की कीमत $100 से अधिक हो गई थी। ईंधन की कीमतों में वृद्धि का असर दुनिया के हर हिस्से पर पड़ेगा। सामानों के दाम बढ़ेंगे, इसलिए समय समाप्त होने से पहले युद्ध को रोक दे। जंग नहीं, दुनिया भर में शांति का झंडा फहराओ।
बिल्कुल सही बात है और अच्छा ईमेल है आपका, और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आपने की हैं। और इसमें जो अहम बात यह है, महत्वपूर्ण बात दीदी, वो ये कि इस वक्त विश्व की जो बागडोर जिनके हाथों में है वही अशांति फैला रहे हैं
जी,
वही युद्ध की आग भड़का रहे हैं। तो अब ये मेरे हिसाब से पूरी दुनिया की जनता में एक ऐसी क्रांति लाने की ज़रूरत है कि ऐसे सभी राजनेताओं को उनकी कुर्सियों से हटा फेंकें कि जो जंग की बात करते हैं, जो युद्ध की बात करते हैं। इसलिए कि दीदी, अगर आप इस पर बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो विश्व में जहाँ जहाँ भी जंग होती है, जहाँ जहाँ भी युद्ध होती है, अशांति होती है, तो सबसे पहले अमरीका और उसके कुछ पिट्ठू
वो तो पश्चिमी देश
वहां पहुंच जाते हैं
जी, बिल्कुल।
और वहां ये युद्ध विराम के लिए नहीं पहुंचते हैं
जी,
बल्कि वहां युद्ध की आग को और ज्यादा भड़काने के लिए पहुंचते हैं,
हथियार बेचने के लिए
पहुंचते हैं। तो इसके ऊपर हमको जो है पूरी दुनिया के जो न्याय प्रेमी लोग हैं उनको दीदी आगे आना होगा और ऐसे सभी राजनेताओं की लगाम या कसनी पड़ेगी या उन्हें बिल्कुल जो है इस सत्ता से दूर करना पड़ेगा, तभी इस दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है और इस दुनिया को परमाणु युद्ध से बचाया जा सकता है। दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका एक बार फिर स्वागत है और इस वक्त जो है वो आप अपना मनपसंद कार्यक्रम अपने भैया रविश और दीदी मरियम महदादी से सुन रहे हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि हमारी साइट पर विजिट करना आप बिल्कुल ना भूलिए। हमारी साइट का एड्रेस है parstoday.ir/hi, तो उस पर ज़रूर आइए, आपको बिल्कुल ताज़ा खबरें मिलेंगी और उसके ऊपर अच्छे अच्छे आपको लेख मिलेंगे। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी मालूमात और जानकारियां आपको हमारी साइट पर मिलेगी, तो हमारी साइट पर विजिट करना ना भूला करें। तो दीदी, अब आपके पास इस वक्त तो मैं जो देख रहा हूँ वो सांस्कृतिक से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक खबर आप जरूर हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं।
जी, जैसे भाई आपने कहा कि आजकल वो जो युद्ध हो रहे हैं
जी,
इतना सारा हथियार बेचे जा रहे हैं, वैसे ही अब यहाँ पे जो संस्कृति है, सांस्कृतिक आदान प्रदान, तो ये भी यहाँ दूसरी ओर चल रहा है। जैसे आजकल अभी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 3 साल के सांस्कृतिक आदान प्रदान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो IRN ने रविवार को बताया कि राजधानी तेहरान में ईरानी संगठन के मुख्यालय में ईरान के इस्लामी संस्कृति और संबंध संगठन के प्रमुख मोहम्मद मेदी इमानीपुर और चीन के संस्कृति और पर्यटन उपमंत्री लू युंग चुआन की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इमानीपुर ने कहा कि अपने संबंधों को विकसित करने के लिए दोनों देशों के उत्साह को देखते हुए उन्हें उम्मीद है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान समझौता मेमोरेंडम द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगा। ईरानी अधिकारी ने कहा कि संयुक्त सांस्कृतिक समिति का गठन दोनों राज्यों के बीच संबंधों के विकास को दर्शाता है। उन्हें उम्मीद है कि कम अंतराल में भविष्य की बैठकें आयोजित करने से संबंधों में सुधार की भूमि प्रशस्त होगी। युंग चुआन ने अपनी ओर से आशा व्यक्त की कि आपसी सांस्कृतिक आदान प्रदान को लागू करने के अगले चरण में दोनों पक्ष सांस्कृतिक और कलात्मक सहयोग का विस्तार करने में सक्षम होंगे। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों को संबंधों को गहरा करने के लिए संयुक्त समिति आयोजित करने से पहले परियोजनाओं की एक श्रृंखला चलानी चाहिए और इन प्रयासों के आधार पर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है।
बिल्कुल दीदी, बिल्कुल सही बात है और वैसे होना भी यही चाहिए कि हमको युद्ध के बजाय, अशांति के बजाय, आपस में लड़ने के बजाय एक दूसरे की संस्कृति के बारे में, संस्कृति के बारे में जाने, उसको देखें,
दोस्ती करें,
शांति लाएं, मेल जोल कर रहे हैं। एक खूबसूरत एक ये धरती है जिस पे हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस धरती को और ज्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है मेल जोल के जरिए, बिना युद्ध किए हुए। आप अब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े बड़ी बड़ी जो संकट थे दुनिया में वो वार्ता के जरिए जो है हल किए जा चुके हैं और हल हो भी सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें ये कि कुछ ऐसे अमेरिका के नेतृत्व में कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे शासन हैं जो अपने हित जो है उस युद्ध में ढूंढते हैं और उसकी वजह से पूरी दुनिया में अशांति फैल रही है। नहीं तो आप ये देखिए कि ईरान और चीन ने जो ये कदम उठाया है कितना सुखद और अच्छा कदम है। दोनों देश आपस अपनी संस्कृति को एक दूसरे से मतलब बांटेंगे, उसको एक दूसरे को समझेंगे, इसमें जो आम जनता है वो भी जो है काफी खुशहाल रहेगी और उसको भी काफी जानकारियां प्राप्त होंगी।
जी,
जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पत्र संसार अपने भैया रविश जैदी और दीदी मरियम मेहरदादी से। तो अब दीदी मरियम मेहरदादी के पास चलते हैं और देखते हैं कि हमारे किन किन श्रोताओं ने किन किन खबरों पर अपने बेहतरीन कमेंट्स दिए हैं।
जी, तो सबसे पहले है सैयद हसन नसरुल्ला के भाषण का जायजा। इस पर मनुचर लिखते हैं, आज वेस्ट बैंक और गजा पट्टी फिलिस्तीन में अभी भी मौजूद है, जिसका श्रेय प्रतिरोध की धुरी इस्लामी गणतंत्र ईरान और प्रतिरोध सेना हिजबुल्ला और हमास को जाता है।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये देखिए, लेकिन बहुत मजलूमियत वाली बात है दीदी
जी,
के एक देश जो फिलिस्तीन है
जी,
उसको पूरी तरह मिटाने के पर तुले हुए हैं ये पश्चिमी देश अमरीका,
और मिटाया है जी,
कि पूरे देश को आज पूरे यानी फिलिस्तीनी लोगों को एक छोटे से टुकड़े में जमा कर दिया,
कुछ टुकड़ों में बचा है।
आप आम इंसान, आम जीवन के बारे में अगर इस पर सोचें कि अभी मैं अपने घर में रह रहा हूँ, कोई आए अलग से इंसान और आके कहे कि भाई आपके घर से बाहर निकलिए और हम इस घर में रहेंगे, अब आज से मेरा घर हो गया, तो हम पर क्या बीतेगी। हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, बलिदान दे देंगे, लेकिन अपने घर को बचाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह फिलिस्तीनी है, और विडंबना ये है कि दुनिया का मीडिया, बड़ी बड़ी शक्तियां जो अपने अपनी जमीन, अपनी छत बचाना चाहते हैं, उनको आतंकवाद कह रहा है, और जो इनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, जो इनके घरों को ध्वस्त कर रहा है, जो इनकी जमीनों को छीन रहा है, जो इनके अधिकारों को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है उसको जो है कहने के वो वह नहीं, जबकि ये पूरी दुनिया जानती है। स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस बात को स्वीकार करता है कि ये इसराइल जो है वो एक अवैध शासन है
जी।
ये कब्जाधारी है, इस अतिक्रमणकारी है, अतिग्रहणकारी है, लेकिन उसके बाद भी आज वे देश वे शक्तियां जो अपने आप को मानवाधिकारों का ध्वजवाहक कहती हैं, जो शांति की बात करती हैं, जो अलग अलग दावे करती हैं, वे एक अवैध शासन के साथ में खड़े होकर मजलूम जनता और मजलूम लोगों के अधिकारों को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है और जल्दी से चलते हैं दीदी के पास और देखते हैं कि दीदी आज किस हमारे प्रिय श्रोता ने अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं ताकि हम इन विचारों को अपने अन्य श्रोताओं तक पहुंचा सकें।
जी, वैसे ये जो हमारे श्रोता है आपके पहचान वाले भी हैं और ये है हमारे अच्छे श्रोता कमरुल हुदा, तो चलते हैं इनके विचार सुनते हैं।
जी, मैं लखनऊ से कमरुल हुदा और एक्चुअली क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है तेहरान रेडियो का, इसको अक्सर हम सुना करते हैं और खबर के साथ साथ के ऊपर जो प्रोग्राम इस्लामिक प्रोग्राम आता है उस इस्लामिक प्रोग्राम में करबला के ऊपर बहुत से ऐसे जिक्र इसमें आते हैं जिसको हम लोग बहुत उससे सुनते हैं और उससे क्या होता है कि इजाफा भी होता है दीन के बारे में भी जो है मॉडिफिकेशन इसमें अच्छा मिल जाता है, मॉडिफाई हो जाता है और अपडेट आदमी हो जाता है कि हमारे इस्लाम के बारे में भी इस रेडियो तेहरान के ऊपर प्रोग्राम आता है और उसके साथ साथ ये है कि देश दुनिया की खबरों और खबरों का सिस्टम तो इससे हम लोग को मिलता रहता है और उसके साथ साथ ये है कि जो सबसे बेहतरीन सिस्टम जो चल रहा है हम लोग को जो मालूम होती है जो सुनने में अच्छा लगता है वो करबला के वाकयात होते हैं जो ईरान के बारे में बताई जाती है, करबला में जो है अहले बैत के बारे में जो जिक्र होता है उन सब चीज को सुनने में बहुत अच्छा लगता है और लाइक करते हैं हम लोग तेहरान रेडियो के प्रोग्राम को।
तो श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे हमारे लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार हैं दीदी ये कमरुल हुदा जी के अच्छे और उच्च विचारों को। और दीदी बता दें ये एक पत्रकारों की संस्था भी चलाते हैं जो यानी उत्तर प्रदेश, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत में भी काफी प्रसिद्ध है। तो दीदी अब हमारे पास समय नहीं है, जल्दी से हमारे श्रोताओं को आप आज एक बार फिर एड्रेस बता दें और हम खुदा हाफिजी करते हैं।
जी, तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsiribir और व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098903506592 और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi और फेसबुक का पता बता दीजिए आप।
फेसबुक पेज पर हमारा एड्रेस है parstoday.hindi। तो अब दीदी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है किसी और चीज का हम एड्रेस बताएं, तो जल्दी से हम अपने श्रोताओं से यानी अपने भैया रवि जैदी और दीदी मरियम मेहरदादी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
विज्ञान की डगर।
दोस्तों, कार्यक्रम विज्ञान की डगर की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं अख्तर रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फोटो प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के आधार पर डामर जल निकासी की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणाली प्रस्तुत की है जो सड़क सुरक्षा में सुधार करने में प्रभावी हो सकती है। इस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार सतह पर रगड़ना सड़क और फर्श की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है जिसका सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में उच्च योगदान है। संतृप्त या अर्ध संतृप्त स्थितियों पर सतह पर रगड़ खाने की शुष्क स्थितियों से अलग प्रकृति होती है और दूसरी ओर हाइड्रोप्लेनिंग की घटना जो बारिश की स्थिति में सड़क से वाहन के विचलन से सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। फुटपाथ की जल निकासी क्षमता और सतह पर घिसकर रगड़ खाने से प्रभावित होता है। इस प्रोजेक्ट के प्रबंधक के अनुसार सड़कों के डामर की सतह की विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। सड़कों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में डिजाइन की गई प्रणाली का बहुत बड़ा योगदान होता है और इसके उपयोग के परिणाम बरसात के मौसम में दुर्घटनाओं की संभावनाओं को काफी कम कर सकते हैं, जबकि इससे पहले इस क्षेत्र में कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। डामर की सतह जल निकासी के मूल्यांकन के लिए इस प्रणाली में दो भाग होते हैं, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। इस प्रणाली के हार्डवेयर भाग में किसी भी प्रकार की फुटपाथ की सतह के लिए नियंत्रित स्थिति में फुटपाथ पर वर्षा के अनुपात का पता लगाया जाता है और दिन व रात के किसी भी समय और किसी भी पर्यावरणीय परिस्थितियों में फर्श या सड़क से जल निकासी प्रक्रिया को एकत्र करने की संभावना प्रदान करता है। इस डिवाइस के हार्डवेयर पार्ट का आउटपुट सॉफ्टवेयर और एनालिटिकल पार्ट को प्रदान किया जाता है। इस प्रणाली के हार्डवेयर से प्राप्त डेटा डिवाइस में एम्बेडेड कैमरों द्वारा अध्ययन किए गए फुटपाथ जल निकासी में सिम्युलेटेड प्रक्रिया से प्राप्त फुटेज होते हैं। 6.6 और 4 की गुणवत्ता के साथ दो प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में ISI के दो लेखों का प्रकाशन इस शोध की एक और उपलब्धि है। दोस्तों, बू अली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने शरीफ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के सहयोग से एक बहुस्तरीय औद्योगिक जल के कचरे को साफ करने के रिएक्टर की डिजाइनिंग और निर्माण करने में सफलता प्राप्त की है। इस परियोजना के प्रबंधक के अनुसार ये मल्टी स्टेज रिएक्टर उद्योगों के लिए कम खर्चीला और प्रभावी हो सकता है। इस उपकरण के छोटे आयाम हैं और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये रसायनों का उपयोग किए बिना औद्योगिक जल के कचरे को साफ करता है और सफाई के दौरान औद्योगिक स्थान में कोई अप्रिय गंध भी नहीं फैलाता। यह रिएक्टर 3 चरणों में प्रदूषित जल को रिफाइन करता है। इस उपकरण के पहले भाग में खराब जल वाला टैंक शामिल है जिसमें इलेक्ट्रोड प्लेटें रखी जाती हैं। ये प्लेटें बिजली पैदा करने वाले उपकरण से जुड़ी होती हैं ताकि प्रदूषित जल में इलेक्ट्रोकोएगुलेशन ऑपरेशन हो सके। इससे पहले के आउटपुट को डिवाइस के दूसरे भाग में एक खास शेड्यूल वाले पंप के साथ इंजेक्ट किया जाता है। डिवाइस के दूसरे भाग में शोषक सामग्री जैसे सक्रिय कार्बन का एक सहायक स्तंभ शामिल होता है जिसे विभिन्न आकारों के कॉलम में डाला जाता है और इसका आउटपुट तीसरे भाग में प्रवेश करता है। रिएक्टर का तीसरे हिस्से में जो रिएक्टर का सबसे महत्वपूर्ण है, सूक्ष्म जीवों का समर्थन करने वाले सूक्ष्म जीव शामिल है। इस परियोजना के प्रबंधक के अनुसार इस उपकरण का उपयोग कपड़ा उद्योग, औद्योगिक पशुपालन और बूचड़खाने में किया जाता है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे बड़ी मात्रा में कीचड़ का उत्पादन होता है और ये कई रसायनों के उपयोग का कारण होते हैं। इन विधियों में रसायनों को तैयार करने के बड़े खर्चे के अलावा कीचड़ को पर्यावरण संगठन को तटस्थ करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस पद्धति में ऐसी कोई लागत नहीं है और इस रिएक्टर का उपयोग करके 90% से अधिक प्रदूषित जल को रिफाइन किया जा सकता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार SAM नामक एक कृत्रिम बुद्धि प्रणाली ने पहली बार अकेले एक ऐसी दवा का आविष्कार किया जो इन्फ्लुएंजा के लिए एक टीका है। अधिकांश समय वैज्ञानिक नई दवाओं को विकसित करने में अरबों डॉलर और कई घंटे खर्च करते हैं, जिनमें से अधिकांश मनुष्यों पर परीक्षण करने से पहले ही विफल हो जाती हैं। इस शोध के शोधकर्ताओं में से एक के अनुसार, हमने कृत्रिम बुद्धि में रासायनिक यौगिकों के बारे में जानकारी दर्ज की जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करते हैं, और ऐसे यौगिक भी हैं जिनका इस प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद शोधकर्ताओं ने हजारों अरबों रासायनिक यौगिकों का उत्पन्न करने में सक्षम एक कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित किया, जिससे SAM को सर्वोत्तम और सबसे प्रभावी यौगिकों पर निर्णय लेने की अनुमति हासिल हुई। शोधकर्ताओं ने कुछ शीर्ष IA सिस्टम विकल्पों को संयोजित किया और प्रयोगशाला में मानव रक्त कोशिकाओं पर उनका परीक्षण किया। इन चुनिंदा रासायनिक यौगिकों में से एक फ्लू का टीका था, जो बाद में परीक्षणों में जानवरों पर बहुत ही प्रभावी साबित हुआ। इस नई वैक्सीन का इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल अमेरिका में शुरू हो गया है। यद्यपि प्रयोग योजना के अनुसार होते हैं और सफल होते हैं तो मनुष्य एक नए युग में प्रवेश करेगा, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता हर दिन नई दवाएं बनाती है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में बॉयलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के शोधकर्ताओं ने एक इम्प्लांट का उपयोग करके, जो मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया जाता है और मस्तिष्क को वीडियोज और फोटोज भेजता है, 6 अंधे लोगों की दृष्टि को आंशिक रूप से बहाल करने में सफलता हासिल की। इस उद्देश्य के लिए इन शोधकर्ताओं ने एक वीडियो कैमरे को चश्मे की एक जोड़ी से जोड़ा। इस कैमरे ने व्यक्ति के मस्तिष्क के विजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रत्यारोपित इलेक्ट्रोड को फोटोज भेजी। पहले आंखों में प्रत्यारोपण पर केंद्रित बायोनिक आंख बनाने के प्रयास किए गए। इस प्रक्रिया के लिए आंखों में काम और शोध की आवश्यकता थी। इनमें से एक शोधकर्ता के अनुसार, आंख में इम्प्लांट का उपयोग करने से कई अंधे लोगों के लिए उपचार के अनगिनत अवसर खुल सकते हैं। इस पद्धति को पूरी तरह से नेत्रहीन लोगों के इलाज के क्षेत्र में बड़ी प्रगति माना जाता है। हालांकि इस तकनीक को अभी तक उन लोगों के इलाज के लिए स्वीकृत नहीं किया गया है जो अंधे पैदा हुए हैं। इस शोध में ऐसे प्रतिभागी भी थे जो कई सालों से अंधे थे। शोधकर्ताओं ने उन्हें काले कंप्यूटर स्क्रीन को देखने और सफ़ेद वर्ग की पहचान करने के लिए कहा, जो मॉनिटर पर अलग अलग बिंदुओं को बेतरतीब ढंग से दिखा रहे थे। अधिकांश समय में वे इस वर्ग को खोजने में सफल रहे। इस शोध में भाग लेने वालों में से एक ने लगभग 10 साल पहले अपनी दृष्टि खो दी थी। जब वो पहले चश्मा पहनता था और अपनी पत्नी के साथ टहलने जाता था तो वो फुटपाथ और घास के चौराहे को पहचान सकता था। वो ये भी बता सकता था कि सफ़ेद काउच कहाँ है। एक 60 वर्षीय रूसी व्यक्ति आकस्मिक दिल के दौरे के कारण अस्पताल में भर्ती हुआ, जिसके बाद पता चला कि उसके मस्तिष्क का केवल आधा हिस्सा उसकी खोपड़ी के अंदर है। दूसरे शब्दों में, उसके मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध में एक खाली गड्ढा है। रूसी सेना में सेवा देने वाला ये सेवानिवृत्त इंजीनियर बिना किसी स्वास्थ्य समस्या के अपने परिवार के साथ रह रहा है। जब इस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने के कारण अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टरों ने सीटी स्कैन किया और पता चला कि उसका आधा दिमाग गायब था। बहुत ही दुर्लभ मामलों में मस्तिष्क के कुछ हिस्सों की अनुपस्थिति गंभीर अक्षमता और यहां तक कि कम उम्र में मृत्यु का कारण बनती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शख्स की हालत में कोई खास तब्दीली नजर नहीं आई और इसीलिए यह उदाहरण बेहद खास है। यह समस्या तब पैदा हुई जब व्यक्ति मां के गर्भ में ही था। दोस्तों आइए अश्वगंधा के कुछ अन्य फायदों के बारे में आपको बताते हैं। आयुर्वेद में अश्वगंधा का इस्तेमाल अश्वगंधा के पत्ते अश्वगंधा चूर्ण के रूप में किया जाता है। अश्वगंधा के फायदे जितने अनगिनत हैं उतने ही अश्वगंधा के नुकसान भी हैं, क्योंकि चिकित्सा के बिना सलाह के सेवन करने से शारीरिक अवस्था खराब हो जाती है। कई रोगों में आश्चर्यजनक रूप से लाभकारी अश्वगंधा का औषधि इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 2 से 4 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करें। अश्वगंधा के फायदे की वजह से समय से पहले बालों के सफेद होने की समस्या ठीक होती है। 2 ग्राम अश्वगंधा 2 ग्राम आंवला और 1 ग्राम मुलेठी को आपस में मिलाकर पीस लें और उसका यानी अश्वगंधा का चूर्ण बना लें। 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण को सुबह और शाम पानी के साथ सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। अश्वगंधा के कारण आंखों को आराम मिलता है। तो दोस्तों कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें इजाजत दीजिए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز